रोमियो ग्यारहवां बाब। पस मैं कहता हूं, क्या खुदा ने अपनी उम्मत को रद्द कर दिया? हरगिज नहीं, क्योंकि मैं भी इसराइली इब्राहिम की नस्ल और बिन्यामीन के कबीले में से हूं। खुदा ने अपनी उस उम्मत को रद्द नहीं किया जिसे उसने पहले से जाना। क्या तुम नहीं जानते कि किताब मुकद्दस एलिया के जिक्र में क्या कहती है कि वो खुदा से इसराइल की यूं फरियाद करता है कि
ऐ खुदावन, उन्होंने तेरे नबियों को कत्ल किया और तेरी कुर्बान गहों को ढा दिया। अब मैं अकेला बाकी हूं और वो मेरी जान के भी खाहां हैं।
मगर जवाब इलाही उसको क्या मिला? ये कि
मैंने अपने लिए 7,000 आदमी बचा रखे हैं जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके।
बस इसी तरह इस वक्त भी फजल से बरगुजीदा होने के बायस कुछ बाकी हैं, और अगर फजल से बरगुजीदा हैं तो आमाल से नहीं, वरना फजल फजल न रहा। पस नतीजा क्या हुआ? ये कि इसराइल जिस चीज की तलाश करता है वो उसको न मिली, मगर बरगुजीदों को मिली और बाकी सख्त किए गए। चुनाचे लिखा है कि
खुदा ने उनको आज के दिन तक सुस्त तबीयत दी और ऐसी आंखें जो ना देखे और ऐसे कान जो ना सुने।
और दाऊद कहता है कि
उनका दस्तरखान उनके लिए जाल और फंदा और ठोकर खाने और सजा का बायस बन जाए, उनकी आंखों पर तारीकी आ जाए ताकि ना देखे, और तू उनकी पीठ हमेशा झुकाए रख।
बस मैं कहता हूं कि क्या उन्होंने ऐसी ठोकर खाई कि गिर पड़े? हरगिज नहीं, बल्कि उनकी लगजिश से गैर कौमों को निजात मिली ताकि उन्हें गैरत आए। बस जब उनकी लगजिश दुनिया के लिए दौलत का बायस और उनका घटना गैर कौमों के लिए दौलत का बायस हुआ, तो उनका भरपूर होना जरूर ही दौलत का बायस होगा। मैं ये बातें तुम गैर कौमों से कहता हूँ, चूंकि मैं गैर कौमों का रसूल हूँ इसलिए अपनी खिदमत की बढ़ाई करता हूँ, ताकि किसी तरह से अपने कौम वालों को गैरत दिलाकर उनमें से बाज को नजात दिलाऊं। क्योंकि जब उनका खारिज हो जाना दुनिया के आ मिलने का बायस हुआ, तो क्या उनका मकबूल होना मुर्दों में से जी उठने के बराबर न होगा? जब नजर का पहला पेड़ा पाक ठहरा तो सारा गूंदा हुआ आटा भी पाक है, और जब जड़ पाक है तो डालियां भी ऐसी ही हैं। लेकिन अगर बाज डालियां तोड़ी गईं और तू जंगली जैतून होकर उनकी जगह पैवंद हुआ और जैतून की रोगनदार जड़ में शरीक हो गया, तो तू उन डालियों के मुकाबले में फख्र न कर, और अगर फख्र करेगा तो जान रख कि तू जड़ को नहीं बल्कि जड़ तुझको संभालती है। बस तू कहेगा कि डालियां इसलिए तोड़ी गईं कि मैं पैवंद हो जाऊं। अच्छा, वो तो बेईमानी के सबब से तोड़ी गईं और तू ईमान के सबब से कायम है। बस मगरूर ना हो बल्कि खौफ कर, क्योंकि जब खुदा ने असली डालियों को ना छोड़ा तो तुझको भी ना छोड़ेगा। बस खुदा की मेहरबानी और सख्ती को देख, सख्ती उन पर जो गिर गए हैं और खुदा की मेहरबानी तुझ पर, बशर्ते कि तू उस मेहरबानी पर कायम रहे, वरना तू भी काट डाला जाएगा, और वो भी अगर बेईमान न रहें तो पैवंद किए जाएंगे, क्योंकि खुदा उन्हें पैवंद करके बहाल करने पर कादिर है। इसलिए कि जब तू जैतून के उस दरख्त से कट कर जिसकी असल जंगली है, असल के बरखिलाफ अच्छे जैतून में पैवंद हो गया, तो वो जो असल डालियां हैं अपने जैतून में जरूर ही पैवंद हो जाएंगी। ऐ भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को अक्लमंद समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से नावाकिफ रहो कि इसराइल का एक हिस्सा सख्त हो गया है और जब तक गैर कौमें पूरी पूरी दाखिल ना हो वो ऐसा ही रहेगा और इस सूरत से तमाम इसराइल नजात पाएगा। चुनाचे लिखा है कि
छुड़ाने वाला सियोन से निकलेगा और बेदीनी को याकूब से दफा करेगा और उनके साथ मेरा ये अहद होगा जबकि मैं उनके गुनाहों को दूर कर दूंगा।
इंजील के एतबार से तो वो तुम्हारी खातिर दुश्मन हैं, लेकिन बरगुजिदगी के एतबार से बाप दादा की खातिर प्यारे हैं, इसलिए कि खुदा की नेमतें और बुलावा बेतब्दील है। क्योंकि जिस तरह तुम पहले खुदा के नाफरमान थे मगर अब इनकी नाफरमानी के सबब से तुम पर रहम हुआ, उसी तरह अब ये भी नाफरमान हुए ताकि तुम पर रहम होने के बाइस अब इन पर भी रहम हो, इसलिए कि खुदा ने सबको नाफरमानी में गिरफ्तार होने दिया ताकि सब पर रहम फरमाए।
वाह, खुदा की दौलत और हिकमत और इल्म क्या ही अमीक है, उसके फैसले किस कदर इदराक से परे और उसकी राहें क्या ही बेनिशान हैं। खुदावंद की अक्ल को किसने जाना या कौन उसका सलाहकार हुआ या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए, क्योंकि उसी की तरफ से और उसी के वसीले से और उसी के लिए सब चीजें हैं, उसकी तमजीद अब तक होती रहे। आमीन।